आप में से शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने सतीश भाई जी को नहीं देखा होगा, देखा है ना सभी ने। तो आपकी एक बहुत सुंदर विशेषता है, चाहे कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कोई भट्टी हो, कोई भी प्रकार का ओकेजन हो, बाबा मिलन का प्रोग्राम हो, हर एक प्रोग्राम में आप उसके अनुसार तुरंत ही एक कविता बनाते हैं और उसे बहुत सुंदर शब्द देकर अपने साज के साथ बहुत सुंदर मधुर वाणी ग्रुप के द्वारा सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये बाबा की गॉड गिफ्ट है। मुरली के ऊपर भी बहुत सुंदर आप कविताएं बनाते हैं। आप करीबन 40 वर्षों से मधुबन निवासी हैं और ऐसे अनेक जो सिंगर हैं, कलाकार हैं, उनके साथ आपने गीत भी गाए हैं, जैसे आशा भोसले, साधना सरगम, इस तरह से अनेक सिंगरों के साथ आपने बहुत सुंदर गीत गाए हैं। तो आज हमें बहुत सुंदर ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि आप हम सभी के समक्ष हाजिर हुए। आज हमें आप चार धाम की यात्रा अपने सुंदर गीतों के द्वारा करवाएंगे। ये भी अपने आप में एक नवीनता है कि कैसे गीतों के माध्यम से हम चार धाम की यात्रा करेंगे। तो एक और बात है कि आपका कुछ दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आप अपना समय निकाल करके हम सभी के समक्ष आए। तो हम सबकी बहुत बहुत शुभ भावना, शुभकामना आपके लिए है कि आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं और अपने गीतों का सभी को लाभ प्राप्त करवाएं। तो आदरणीय सतीश भाई जी।
ओम ओम शांति। सभी एक बार कहेंगे जरूर, ओम शांति। सबसे पहले मैं आप सबको दिल की गहराइयों से हैं तो ढेर सारी बधाइयां, लेकिन नए वर्ष की पूर्व वेला पर आप सबको नूतन वर्षाभिनंदन, ढेर सारी बधाइयां। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और संगम युग का आनंद लेते रहें। आपने लिया नहीं, स्वीकार नहीं किया। दूसरी बधाई, मधुबन में भट्टी करने का चांस मिलना बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि मधुबन बाबा की कर्मभूमि, चरित्र भूमि, अवतरण भूमि, मधुबन महान भूमि है। कितने दिनों से कितने भाई बहने प्रयास करते रहे हैं कि मधुबन में जाने का मौका मिले और मधुबन की वातावरण में रह करके अमृत वेला बाबा के साथ बाबा के कमरे में करें और चारों धाम की यात्रा करें। इस चीज की आपको शुरुआत में मिल गई और मिलने का इतना आसान तरीका तो नहीं होता है, लेकिन जिनका रथवान स्वयं शक्तिवान और स्वयं हमारी दीदी हो तो उनको मिलना ही। चलिए, हम सब जानते हैं कि हमारे चारों विषय में ईश्वरीय याद मुख्य विषय है और हम याद के लिए तमाम प्रयास करते हैं, आत्मविमानी बनने का, निरंतर याद करने का, संस्कार परिवर्तन करने का और संपूर्ण पावन बनने का। कैसे हम आत्मनिश्चय करें, जो बाबा आज भी घड़ी घड़ी बार बार कह रहे हैं कि बच्चे आत्मविमानी बनो, कल भी परसों भी रोज, लगभग हर रोज की मुरली में ये बात आता है, ये बात आती है कि मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझो। मेरा भी बड़ा अच्छा अनुभव रहा है, मेरा प्रिय विषय रहा है स्वराज अधिकारी बनने का। आज से लगभग 25-30 साल पहले मैं जब किचन भोजन बनाया करता था तो एक बार भोली दादी जी से मैंने कहा कि दादी जी मुझे भट्ठी करनी है। मुझे लगता है कि ये हुए बहुत साल हो गए, तब नया नया ओम शांति भवन बना था। तो दादी ने कहा कहाँ जाओगे? मैंने कहा दादी ओम शांति भवन भट्ठी करूंगा। तो कहा अच्छा। तो मैं गया, सारे दिन मैंने आत्मचिंतन की प्रयोगशाला में खूब लगाया। एक दिन पूरा बीता, कुछ हुआ ही नहीं। पूरा सारा दिन लग गया उसमें। शाम तक लगा कि कुछ और समय चाहिए। फिर मैंने दादी जी से कहा कि दादी एक दिन का और मोहलत मिले तो अच्छा है। मिल गई दोबारा, इधर मुझे मोहलत मिल गई और उधर दादी ने बड़ी दादी को बताया कि वो भट्ठी कर रहा है ओम शांति भवन में। तो दादी ने क्लास में नाम बता दिया कि देखो लगन ऐसी होनी चाहिए कि यहां भी रह करके समय निकाल के आत्मभिमानी बनने की क्या लगन है। मुझे जो एक दो मिले तो कहने लगे अरे आज तो दादी आपकी बात कर रही थी। मैंने कहा लो अभी तो भट्टी जलाई नहीं, धुआं निकला ही नहीं और हमारा नामाचार हो गया। फिर दूसरे दिन फिर जम गए। दोपहर के बाद से कुछ कुछ अच्छा लगने लगा। ऐसा लगा कि अब मैं चमकता हुआ सितारा चलता फिरता ऐसा हो रहा है और मैं चारों तरफ वही दिखाई पड़े, सूक्ष्मतन दिखाई पड़े, परमधाम दिखाई पड़े, कुछ होने लगा। कुछ कुछ ऐसा लगा कि दो दिन बीता लेकिन अभी भी पेट भरा नहीं। फिर तीसरे दिन पहुंच गया दादी एक दिन के मोहलत और चाहिए। आप यकीन मानिए तीसरे दिन मैं नीचे उतरू ही नहीं, चारों तरफ बस आत्मचिंतन की वो गहराई, आत्मा देखने का वो लगन, उसने मुझे बहुत मदद किया। और मेरा सौभाग्य रहा है कि जब से मैं मधुबन में आया तो मैंने कुछ और तो सीखा ही नहीं। स्कूल पढ़ते थे, मधुबन में आ गए, यहां आप पर आए तो बहुत अच्छा ये लगा कि मुझे दो ही काम मिला। आते ही हमारे वो बीच में चिमन भाई एक हैं, चिमन भाई मधुबन, चिमन भाई जरा हाथ उठाना, तो चिमन भाई बैठे हैं। मेरी मधुबन में आया तो पहली मुलाकात चिमन से हुई और चिमन भाई ने मुझे किचन में अपने साथ ले लिया। किचन की बड़ी महिमा सुनता था। जब उन्होंने ले लिया तब मैं दो ही काम सीखा, एक तो खाना माना बनाना भी खाना भी, और दूसरा गाना। खाना और गाना के अलावा कुछ आया नहीं। और तब से कितना अच्छा ब्राह्मण जीवन, बाबा कहते हैं और क्या करोगे, तुम करने वाले भी कौन होते हो, करण करावन हार तो वो है, हम तो निमित कठपुतलियां। उस दिन बाबा ने बोल भी दिया आत्मा कठपुतलियां हैं तुम हो, बाबा नचारा है। तो बस मेरे जीवन में बस ये चार बात आई, भोजन और भजन, खाना और गाना, ताली और थाली, क्लास और ग्लास। तो बहुत सुंदर समय का मिला, मैंने स्वराज अधिकारी बनने की बड़ी अच्छी लगन लगाई और मैं आज जिस मुकाम पे हूं, जो सारे विश्व का, सारी अपनी बहनों का, सारे ईश्वरीय परिवार का जो प्यार मिल रहा है वो इसी बदौलत मिल रहा है कि मैंने ब्राह्मण जीवन में, योगी जीवन में यहां पर बहुत बैलेंस रखा। गीतों वगैरह में जहां पर ज्यादा बहिर्मुखता में आते हैं वहीं पर उतना अंतर्मुखी हो जाता हूं, जितना सबके सामने होता हूं उतना फिर अंडरग्राउंड हो जाता हूं। तो ये बिना बैलेंस के ब्राह्मण जीवन में बैलेंस रखो तो ब्लेसिंग मिलेगी और लाइफ जो है वो ब्लिसफुल हो जाएगी। तो बहुत अच्छा रहा। मैं आपको चारों धाम की यात्रा कराना चाहता हूं। आप तो मालूम है कि मधुबन हमारा लाइट हाउस है और मधुबन पावर हाउस भी है। मधुबन हम सब बच्चों का प्यारा अपना सहकारी वतन है, मधुबन हम सब का प्राण है, मधुबन और मधुबन का बाबा यही यही और बस यही। तो मधुबन के प्रति पिछली बार भी ऐसे हुआ कि भाई बहने आए तो मुझे कहा कि कुछ आप कमेंट्री कराई, तो मैंने कहा इससे अच्छा क्या है, आप मधुबन में हैं तो चलो मधुबन में चक्कर लगाते हैं। दीदी ने फिर वही प्रोग्राम दिया है तो चलिए बैठते हैं याद में। ये इसलिए आवश्यक है कि कई भाई बहनें सोचते हैं कि मेरा योग नहीं लगता है या योग में जाता हूं परमधाम नहीं पहुंचता हूं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना निराकारी आवश्यक है याद, उतना ही आकारी भी याद याद आवश्यक है और उतना ही साकारी याद भी है, क्योंकि तीनों चीजें अपने अपने में परफेक्ट है। बड़ी दादियों ने उन्होंने निराकारी का कोई ज्यादा अभ्यास नहीं किया, लेकिन बाबा के प्यार में इतने समाये रहे, शुरू में तो ज्ञान भी नहीं था कि निराकार हूं और जाके मैं परमधाम में बैठा रहूं, लेकिन जो लगन लगाई कि बाबा के अलावा उन्होंने कुछ भी देखा नहीं। मैं तो दादियों के साथ जब मैं मधुबन में आया तो 50 भाई मधुबन निवासी थे, जिधर जाओ सब दादियां ही दादियां थी, और देखते देखते ऐसे उड़ने लगे, आज ये आज वो कल वो, लगातार नंबर आता गया और कुछ ही सालों में सब दादियां उड़ गई। तो मैंने महसूस किया दादियों से, मैं दादी गुलजार दादी से पूछा एक बार, दादी जी का मैं भोजन बनाता रहा 8 साल तक बाबा के रथ का, तो मैंने एक दिन कहा कि दादी आपको कोई भी देखता है तो आप में बाबा दिखाई पड़ता है, और सपने में भी बाबा दिखाई पड़ता, आप ही सामने आते हैं, जब मिलते हैं तो भी आप ही सामने होते हैं, और कहीं पर किसी कोने में लगता नहीं आप बाबा से अलग हैं, बाबा आपसे अलग है, लेकिन आपको शाम को देखता हूं बाबा कमरे में बैठ के ऐसे याद कर रहे हैं। दादी आपको याद करने की क्या जरूरत है? जरूरत है जब आप क्या आपके अंदर कोई आशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई बात की कमी नहीं है, आप सब तो परफेक्ट हो गए हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं है, कुछ भी नहीं, रात दिन बाबा और आपको देख के बाबा की याद आती है, कितनी दुआएं आपको भरी हैं। दादी फिर आप योग कितना क्यों कर रहे हैं? तो क्या कहा होगा? कहा होगा, कहा ऐसे थोड़ा बचा है, माना ऊपर की जो लिंक है बाबा से लगने में, निरंतर होने में थोड़ा सा बचा है। इतना अच्छा जवाब सुनकर के मेरा मन खुश हो गया। एक बार ताली बजा लीजिए दादी जी, बहुत अच्छा। मैंने कहा इससे अच्छा जवाब क्या हो सकता है कि थोड़ा बचा हुआ है, वही पुरुषार्थ है, लगन एकदम लगे। और आजकल तो कल ही मैंने बात किया तो दादी एकदम कभी कभी कुछ शब्द बोलती हैं जब जरूरत पड़ती है, तो नहीं तो दादी एकदम जैसे हैं भी और जैसे नहीं, एकदम अव्यक्त स्थिति, बहुत प्यारी सी। तो निरंतर याद अगर करना है, 24 घंटे याद करना है, सोते हुए भी हमारा मुखड़ा बाबा की याद दिलाए, चलते फिरते निरंतर बाबा में हम समाये रहें, तो उसके लिए साकारी आकारी निराकारी, जिनको निराकारी परमधाम तक जाने में दिक्कत हो तो परमधाम में मत जाइए, आप मधुबन में आ जाइए, मधुबन के चारों धाम देखिए, आपको एक एक जगह पर बाबा की जो यादें हैं, बाबा का जो प्यार है, और बाबा दादियों ने, मैं जैसे यहां से गुजरता हूं तो जैसे वो गेट जैसे आंगन पड़ता है वहां पहुंचता हूं तो मुझे दादी दिखाई पड़ती है, मुझे फलानी दादी दिखाई पड़ती है, वो दादी दिखाई लगता है, अरे दादी बैठी है। मैं जैसे बाबा के कमरे में जाता हूं निकलता हूं तो सामने दादी का चित्र, दादी जानकी का चित्र, दादी का चित्र, ये सब इतना जीवंत है मधुबन कि आपको ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं, साकारी आपके वतन यही मधुबन ही आपको याद दिलाने के लिए काफी है। तो साकारी याद, आकारी याद, निराकारी याद, इनका एंजॉय कीजिए। जब यहां बैठता हूं सवेरे रोज यहां अमृत बेले योग कराता हूं तो 4 बैठता हूं, और रेगुलर मेरी एक अपनी एक हॉबी समझ लीजिए, लोग तो कहते हैं कि ये आपकी जो है विशेषता है, मुझे विदेशी भाई बहने अमृत बेला ब्रदर बोलते हैं, क्योंकि मैं मधुबन में रहते हुए आज तक 40 हो गए कभी अमृत बेला मिस नहीं किया। बहुत बड़ी, ये मैंने सोचा नहीं था कभी मैं आपको आगे सुनाऊंगा, क्योंकि तब तो सुनाते भी नहीं थे, मैंने मधुबन में आते ही ठान लिया कि मुझे अमृत बेला मधुबन में रहकर जिस कमरे के लिए, जिस मधुबन के लिए एक एक दिन के लोग तरसते हैं, कि काश कि मुझे मौका मिले मैं बजाऊं मधुबन में, वहां रहते हुए मैं मधुबन निवासी बन जाऊं और बाबा से बिना मिले रहूं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट न करूं और अमृत बेला जो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है वो न करूं, तो मैं तो महाअपराधी हूं। तब वहीं आते ही मैंने, विश्व रतन दादा थे, बहुत कम भाई बहने जानते होंगे, कोई जानता है आप में विश्व रतन दादा को, जिन्होंने देखा भी है? देखा तो कोई नहीं होगा। अच्छा थोड़ा, अच्छा बहने हमारी तो है, बहने तो विश्व रतन दादा जो कल्प वृक्ष की जड़ों में है, विश्व रतन दादा से बहुत हमको मिला, शिक्षा मिली, उनको देखते थे तो रोज अमृत बेले बैठते थे, छोटे हाल में विश्व रतन दादा और इस साइड में दीदी मनमोहिनी बैठती थी, और उन लोगों ने ऐसा सिखाया कि मेरे जीवन का आदर्श बन गया। मैंने 5-6 बातें अपने जीवन के लिए ऐसी बना ली कि मुझे जीवन पर्यंत करना है, और उस आधार ने बहुत अच्छी मदद की। तो आज चलिए लाल लाइट कर देते हैं, चलते हैं आपके साथ मधुबन की यात्रा पर, बहुत प्यारी सी यात्रा है। आप और सब संकल्पों से निरसंकल्प हो जाएं, मधुबन में पहुंच ही गए हैं, आइए मेरे साथ मधुबन का हम चक्कर लगाएं। सिमर सिमर मन सुबह शाम, सिमर सिमर मन सुबह शाम, मधुबन के ये चारों धाम। दिल को सुकून देते आराम, परम तीर्थ ये पावन ग्राम, मधुबन के ये चारों धाम, मधुबन के ये चारों धाम। प्रभु की ये अवतरण भूमि है, प्रजापिता की कर्म भूमि है, शक्तियों की चरित्र भूमि है, देवों की ये रंग भूमि है, यहां फरिश्ते करें मुकाम, मधुबन के ये चारों धाम, मधुबन के ये चारों धाम। कमरा बुलाए बाहें खोल, कुटिया सुनाए मीठे बोल, हिस्ट्री हॉल की मिस्ट्री अनमोल, शांत स्तंभ सा रहो अडोल, स्नेह शक्ति पावन सुख धाम, मधुबन के ये चारों धाम, मधुबन के ये चारों धाम। कमरा हमको समान बनाए, कुटिया उदासी दूर भगाए, हिस्ट्री हॉल वेस्ट मिटाए, शांति स्तंभ शक्ति लुटाए, शांति स्तंभ शक्ति लुटाए, व्यर्थ को देते पूर्ण विराम, मधुबन के ये चारों धाम। सिमर सिमर मन सुबह शाम, मधुबन के ये चारों धाम। सृष्टि के सच्चे सुख धाम, दिलवाड़ा अचल घर सुनाम, दिलवाड़ा अचल घर सुनाम, दिल को सुकून देते आराम, मधुबन के ये चारों धाम। करते भक्त हैं कोटि प्रणाम, मधुबन के ये चारों धाम। सिमर सिमर मन सुबह शाम, मधुबन के ये चारों धाम, मधुबन के ये चारों। प्यारे बाबा, संगम युग में आपने हमें तमाम वरदानों से, तमाम खजानों से तमाम उपहारों से संपन्न कर दिया है। आप मिले, आपसे हमें संपूर्ण ज्ञान मिला, योग की पावन राहें मिली, पवित्र जीवन का उपहार मिला, प्यारा सा ईश्वरीय परिवार मिला, और कितना सुंदर मिला ये प्यारा मधुबन। मधुबन यही हमारा सच्चा सच्चा तीर्थ है, यही हमारा साकारी वतन, प्यारे बाबा की यादों में समा देता है। कदम कदम पर बाबा, मामा, दादियों, वरिष्ठ बहनों, वरिष्ठ भाई, हमारी एडवांस पार्टी में जाने वाली एक एक आत्मा है। इस भूमि को तपस्या से श्रृंगार किया, इस तपोभूमि को अपने रंग में रंगकर शक्तिशाली ऊर्जा से भर दिया। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई, साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई। मधुबन में दिखे दृष्टि देते, कमरे से टोली आई, प्यारे बाबा से बात हुई तो स्नेह में अखियां भर आई। आंगन में दिखे दृष्टि देते, मुरली तुम्हारी बजने लगी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी तो स्नेह में अखियां भर आई। बाबा, ये वही आंगन है जहां पर साकार में आपने तपस्या की। बाबा, वो कमरे के सामने वो पत्थर का थोड़ा ऊंचा टीला, वहीं आपका खड़ा होना, और मधुबन में बच्चों की टोली आपसे दृष्टि लेती, आपका पीछे 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 होते जाना, और बच्चों का आगे आगे आते जाना। कौन भूल सकता है वो परम तपस्वी महान तेजस्वी विश्व का आदि वो रचनाकार साक्षात प्रजापिता ब्रह्मा को, जिनकी एक मिलन सारी जिंदगी को कृतार्थ कर देती है। बाबा, वो सामने का टेनिस कोर्ट, वो आपका खेलना, वो बच्चे बच्चे कहना, आपने कहा, बच्चे संभल के खेलो, गिर जाओगे। इधर बाबा ने कहा और उधर वो गिर गया। बाबा साकार में कहे वो बोल, आज हम साकार होते पाते हैं। कुटिया में जाते हैं, तो लगता है बाबा आप हमको पत्र लिख रहे हैं। आज भी आप वहीं पर हैं, अपना संपूर्ण प्यार दे रहे हैं, बच्चों को खुशनसीब बनाते हैं। बाबा कोई भी बच्चा उदास न रहे, गमगीन न रहे। लगता है अटल तपस्या लीन, मानवता का उच्च शिखर, वो गीता का अर्जुन, वो महान कल्प वृक्ष का आदि, वो आदि कलाकार आदि रचनाकार सारे संसार को अपने महान संकल्पों से बच्चों को साथ में लेकर नूतन सृष्टि का सृजन कर रहा है। दिल वाले बाबा, दिल वाले बच्चे, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते। दिल वाले बाबा, दिल वाले बच्चे, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते। मजमून खत का ओ बाबा इतना, साकार दिन वो नहीं भूलते हैं। दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। अमृत वेले आंगन में देते, दृष्टि वो लेती, बच्चों की टोली खेल भी खेले, झूले भी झूले, हमसे ही की क्यों आँख मिचोली। दिन वो सुनहरे संग वो रुपहले, यादों के पर्दे पे हम देखते। दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। दिल वाले बाबा, दिल वाले बच्चे, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं। बगिया में देखा बच्चों को लिखते खत, वो प्यारे प्यारे फिर कहाँ छुप जाते। कुटिया में देखा फूलों से हंसते, पहुंचे वहां तो जाने कहाँ छुप जाते, मजमून खत का ओ बाबा इतना, मजमून खत का ओ बाबा इतना, मधुबन में बाबा तुम्हें ढूंढते हैं, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं, दिल वाले बाबा, दिल वाले बच्चे, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं, कह कर के ड्रामा मुस्का रहे हो, बाबा वतन में तुम्हें देखते हैं, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते हैं, दिल वाले बाबा, दिल वाले बच्चे, दिल का लिखा तुम्हें खत भेजते बाबा। कमरे में बजाते ही सन्मुख आपको पाते हैं, ऐसा लगता है कि परम तपस्वी आज भी अपने कंधों को, अपने सिर को हाथों पर टिकाए, वो फरिश्ता आज भी वहां लेटा है, ऐसा लगता है कि अपनी सब शक्तियां, अपना हाथ शक्तियों को देकर संपूर्णता का सत्य बाप सत्य बच्चों को सत्यता का वरदान देता है। समर्थी बनने का वरदान देता है, संपन्न और संपूर्ण भव का वरदान देता है। कोई भी आए ऐसा प्रतीत होता है, आज भी बाबा सबको वैसा ही अनुभव करा रहे हैं। विचित्र लीला बाबा आपकी देखते हैं, ये कमरा संसार का सर्वोच्च स्थल है, स्वयं जहां प्रजापिता ब्रह्मा ने नए विश्व के निर्माण की नींव रखी, स्वयं एक झोपड़ी में रहे साधारण से कमरे में, पर्णकुटी में रहकर सबके लिए स्वर्णिम महल तैयार किया, प्यारे बाबा क्या निश्चय, क्या समर्पण मेहता, क्या दिव्य गुणों से भरपूर आपका जीवन, आपने हमें जीना सिखाया। आनंद से भरे बाबा वो याद है, आपकी निश्चय, जब बच्चों के भोजन में दाल तक नहीं था। जब सबको खिलाने के लिए थोड़ा सा भी आटा नहीं था, भोली दादी जा जा करके मामा के पास जाती थी, फिर मामा भी कई बार सुनने के बाद बाबा के पास जाती थी। वो घड़ी सबको याद है, बाबा भोजन से उठ के कमरे में आते हैं, बाबा से बात करते हैं, तार जोड़ लेते हैं, बाबा यज्ञ आपका है, आप समा दिए, बच्चों को मिलना चाहिए, और देखते देखते कोई एक बैलगाड़ी वाला, कोई जान ना पहचान और गेट पे आ जाता है और कहता है मुझे कोई सफेद वस्त्रधारी बोला कि बाजार में जाने के बजाय तुम वहां उस मकान में जाओ, मैं लाया हूं, जल्दी खाली कीजिए। वो चरित्र, वो प्यार, वो पालना, वो यज्ञ का इतिहास आंखों के सामने जीवंत होते ही नयन सजल हो जाते हैं। बाबा हिस्ट्री हॉल में पहुंचते ही आपके दिनों के सारे चित्र और चरित्र आपके स्नेह में समा लेते हैं। कौन कहता है मुझे बाबा की याद नहीं आती? आपके उपकारों से उपकृत हर हृदय स्वतः सतत निरंतर आपके स्नेह में समा जाता है। उस हिस्ट्री हॉल में थोड़े से भाई बहनों को ऐसा आपने सुनाया जैसे सारे संसार को आपने सुना रहे हो। आज भी बाबा आपकी वाणी सुनकर लगता नहीं कि दो चार भाई बहनों के बीच में सुनाया हो। नित्य नई स्फुलिंग, नित्य स्वतः जीवंत ऊर्जा, नित्य प्रेम का वही निर्मल निश्चल मधुर प्रवाह, सतत बहती हुई वो ज्ञान की अविरल धारा हम आपको कैसे भूल सकते हैं? किस तरह से आपने स्वयं को व्यक्त से अव्यक्त बना लिया? अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को। प्यारे बाबा शांत स्तंभ पर आते लगता है कि वहां फरिश्ता तपस्या में लीन है। विश्व शांति की किरण अविराम समस्त विश्व में शीतल मलय समीर की तरह समस्त संसार को अपनी स्नेह की ऊर्जा प्रदान कर रहा है। बाबा शांति स्तंभ पर पहुंचते ही इतने प्यारे सुंदर शिलालेख सुनकर पढ़कर मन अतीत और आपकी उस उदात आपकी महान शिक्षाओं को सुनकर हृदय द्रवित हो जाता है। शांति स्तंभ दिव्य गुण धारण करना याद की यात्रा करना पवित्र बनना और बनाना हमारे अति प्रिय पिताश्री की दिव्य स्मृति में जिन्होंने हमारे जीवन को कमल पुष्प के समान बनाया जो शिव बाबा का साकार माध्यम बन हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने जो अव्यक्त रूप में हमारी स्थिति अव्यक्त बनाने में तत्पर है। ज्ञान स्तंभ पर लिखा है समय कम है गफलत मत करो अविनाशी ज्ञान धन दान करो। प्यारे वत्सों परमात्मा शिव सभी के परम पिता हैं। भारत सभी देशों में महान देश है। आबू सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान है। ये रहस्य सभी को समझाना कितने सुंदर शिलालेख कालजयी सत्य स्तंभ पर आते हैं। निश्चय में ही विजय है। ज्ञान स्वरूप बनो प्रेम स्वरूप बनो शक्ति स्वरूप बनो। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। लाडले बच्चे इस सहज राजयोग से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। सिकी लधे बच्चे इस संगम युग में पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हारा जन्म हीरे तुल्य है। पवित्रता स्तंभ पर आते हैं। मन वचन कर्म से दुख न दो। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। प्यारे बच्चों प्रिय वत्सों मुक्ति जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इतने सुंदर शिलालेख हृदय में छप जाते हैं। आज भी कानों में प्रतिपल प्रध्वनित होते हैं वेदों की ऋचाएं कुरान की आयतें गीता का संपूर्ण अध्याय इन थोड़ी शिक्षाओं में मुखरित हो जाती हैं। बाबा किस तरह से आपके प्रेम का गुणगान करें दिल तो यही करता है, किन यादों से कहीं दूर न जाए। यही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है, ये प्राण धन है, ये जीवन धन है। बाबा कितने वर्षों तक आपने जो साकार में पालना दी, अनवरत देह मानी बनो, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनो, ये बोल कैसे भूलेंगे। 18 जनवरी के दिन ज्यों ज्यों समीप आते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं बाबा आपकी याद दिलाती हैं। सभी भाई बहनें स्नेह के सागर, स्नेह में हमको ऐसे आप समाए हैं, स्नेह में समाए आंखों के सामने आए हैं। कितने वर्षों तक अव्यक्त पालना में आपने हमें समा लिया है, वो आपका आना, वो झंडा लहराना, अपना जन्मदिन मनाना, ईश्वरीय महावाक्यों से श्रृंगार करना, वो दृष्टि का देना, अव्यक्त पालना देना, वो हॉल में चक्कर लगाना, एक एक को दृष्टि देना, दो दो जिंदगानियां हम बच्चों की सेवा में, स्वाहा कर देना, कैसे भूल सकता है। घंटों घंटों तक ऐ आंखों ये दृश्य देखो, बाबा का आना पूरा चलना, कहीं और जाना नहीं। ये सबसे सुहाने हैं पल जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसे जमी रह गई है। सुहाना क्षमा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई है, कैसे भूल सकते। बाबा आपने इतने उपकार किए, इतना प्यार दिया, ये कहना कि हम आपको भूल जाते हैं, कितनी बड़ी कृतज्ञता है। इतना प्यार मिलते भी कोई कैसे कह सकता है कि आपकी याद नहीं आती। बाबा आपकी याद तो भूल नहीं सकती, बाबा 18 जनवरी के दिन है, आपकी यादें रह के आ रही है। सभी भाई बहने खड़े हैं शांत स्तंभ पर, एक टिक एक लगन में, केवल और केवल बाबा सबके नयन स्नेह में गीले हैं। साकार में मिलन का, साकार में मिलन का प्यारा सा वो नजारा, अव्यक्त में दुबारा हमको दिखा रहे हो। पहले तो थे बुलाते मधुबन में, अब वतन में करके हमें इशारा, अब भी बुला रहे हो साकार में मिलन का, साकार में मिलन का। कमरा ही तो है बदला, कपड़ा ही तो है बदला, बाकी वही है सारा, बाबा सुना रहे हो। आखिर तलक रहेंगे, आखिर तलक रहेंगे बच्चों के साथ हर पल, वादा वो प्यारा प्यारा, अभी निभा रहे हो साकार में मिलन का, साकार में मिलन का। जिस राह पर स्वयं तुम बाबा बढ़े चले थे, उसी राह पर हमें भी बाबा चला रहे हो। मधुबन में पहले तुमने तो खुद किया तपस्या, आकर वतन से हमसे वही तप करा रहे हो साकार में मिलन का। साकार संग वाले प्यारे से दिन निराले, आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले, वो दिन सुहेज वाले, हाथों से वो खिलाना, गोदी में वो बिठाना, नैनों में वो समाना, कह कर के बच्चे बच्चे, कह कर के बच्चे बच्चे वो खेलना खिलाना, वो सैर का कराना, आगे को बढ़ते जाना, आंसू को पोंछ करके, आंसू को पोंछ करके अपने गले लगाना, हाथों को फेर सर पे, बड़े प्यार से उठाना, वट वृक्ष के तले तक, वट वृक्ष के तले तक देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, वो लाल अक्षरों के, वो लाल अक्षरों के खत याद हैं अभी भी, वो दिन साकार वाले भूलेंगे ना कभी भी, भूलेंगे ना कभी भी।
खो गए सभी साकार की यादों में। कौन कौन खो गए और समा गए, दृश्य किस किस को इमर्ज हुए, क्योंकि ये सेशन रूटीन से हट करके था। जो स्वरूप बनते गए अनुभव करते गए महसूस करते गए, इसलिए बाबा कहते जब भी मधुबन में आते हैं उन स्मृतियों को इमर्ज करो, और वो स्मृतियां सहज उन यादों में ले जाती हैं। सहज स्वरूप बना देती हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी मेहनत नहीं है, तो सतीश भाई का आप सब की तरफ से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है। खोई हुई स्मृतियों को इमर्ज कर दिया, शरीर ना दुरुस्त होते हुए भी कल शांतिवन चले गए थे फिर भी आ गए। थैंक यू। डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट मना किया हुआ है, ऊपर नहीं जा सकते हो।
दीदी कहती है डॉक्टर की छोड़ो यहाँ जाओ।
क्या डॉक्टर तो बोलते रहते हैं, उनका काम ही है बोलना कि बेड अरेस्ट हो जाओ। मैं काम को अरेस्ट नहीं होना है, इजी रहो लाइट रहो, ठीक है संभालना है, परंतु उसको पकड़ करके भी बैठ नहीं जाना है।